ధ్యాయేన్నిత్యం మహేశం రజతగిరినిభం చారుచంద్రావతంసం రత్నాకల్పోజ్వలాంగం పరశుమృగవర వేతిహస్తం ప్రసన్నం పద్మాసీనం సమంతాత్ స్తుతమమరగణిర్ వ్యగ్రకృత్యం వసానం విశ్వాద్యం విశ్వవంద్యం నిఖిలభయహరం పంచవక్త్రం త్రినేత్రం నారాయణం పద్మభవం వశిష్ఠం శక్తిం చ తత్పుత్ర పరాశరం చ వ్యాసం సుకం గౌడపదం మహంతం గోవిందయోగీంద్రమథాశిష్యం శ్రీశంకరాచార్యమథాస్య పద్మ పాదం చ హస్తామలకం చ శిష్యం తంత్రోటకం వార్తికకారమన్యాన్ అస్మద్ గురుం సంతతమానతోస్మి విశుద్ధ జ్ఞానదేహాయ త్రివేది దివ్యచక్షుషే శ్రేయః ప్రాప్తి నిమిత్తాయ నమః సోమార్ధధారిణే ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః. చంద్రశేఖర 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 పాహి మాం చంద్రశేఖర 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 పాహి మాం చంద్రశేఖర 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 రక్ష మాం చంద్రశేఖర 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 రక్ష మాం రామ రాఘవ రామ రాఘవ రామ రాఘవ పాహి మాం రామ రాఘవ రామ రాఘవ పాహి మాం రామ రాఘవ రామ రాఘవ రామ రాఘవ రక్ష మాం రామ రాఘవ రామ రాఘవ రామ రాఘవ రక్ష మాం కృష్ణ కేశవ కృష్ణ కేశవ కృష్ణ కేశవ పాహి మాం కృష్ణ కేశవ కృష్ణ కేశవ కృష్ణ కేశవ పాహి మాం కృష్ణ కేశవ కృష్ణ కేశవ కృష్ణ కేశవ రక్ష మాం కృష్ణ కేశవ కృష్ణ కేశవ కృష్ణ కేశవ రక్ష మాం చంద్రశేఖర 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 పాహి మాం चंद्र शेखर चंद्र चंद्र शेखर पाही मां चंद्र शेखर चंद्र शेखर चंद्र शेखर रक्ष मां चंद्र शेखर चंद्र शेखर चंद्र शेखर रक्ष मां चंद्र शेखर रक्ष मां चंद्र शेखर रक्ष मां ओम ओम ओम। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट आयोजित मातुश्री बेलाबेन पिताश्री मूलजी भाई एवं भाई श्री हरिराम दैया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत ये सायंकालिक प्रवचन का आयोजन किया गया है। एकादश दिवसीय यह प्रवचन श्रृंखला का आज अंतिम दिन। इस प्रवचन श्रृंखला में प्रवचन का विषय रखा गया था आदिगुरु सर्वज्ञ भगवान श्री शंकराचार्य जी द्वारा विरचित वाक्यवृत्ति नामक एक छोटा सा प्रकरण ग्रंथ को आधार बनाकर विगत 10 दिन में विचार चलता रहा। जैसा कि हमने शुरू से ही कहा है, ये ग्रंथ मुमुक्षु जिज्ञासु शिष्य और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के बीच का संवाद है। शिष्य भी पूर्ण अधिकारी पूर्वक उपस्थित हुआ है और गुरु भी पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ है। जैसे कि उपनिषद ने कहा, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाविगच्छत् समित्पाणि श्रोत्रियम् ब्रह्मनिष्ठम्। तत्पद को जानना हो तो श्रोत्रिय गुरु के पास ही जाना चाहिए। एव पद से गुरु के पास ही जाना चाहिए और श्रोत्रिय गुरु के पास ही जाना चाहिए। गुरुम एव अभिगच्छत्। गुरु के बारे में तो बता दिया श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, तो श्रुति ने साथ में शिष्य के लिए भी शर्त रखी है। कैसा शिष्य जाए ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास? समित पाणी। समित पाणी का अर्थ होता है साधन चतुष्टय संपन्न शिष्य ही जाए, अन्यथा वाक्यवृत्ति समझ में नहीं आएगा। वाक्यवृत्ति वाक्यार्थ के रूप में या परोक्ष शब्दार्थ के रूप में समझ में आ भी जाए तो फलीभूत नहीं होगा। फलीभूत होने के लिए तो पात्रता चाहिए, योग्यता चाहिए। तो शिष्य भी श्रुति के कहे अनुसार ही पूर्ण तैयारी में समित पाणी होकर ही पहुंचा है। जैसे कि शिष्य के जिज्ञासु के प्रश्नों से ही पता चलता है कि वो पूरी तैयारी में है। गुरु कहे कि चुटिया काट ले तो वेदांत सुनाऊंगा तो भी तैयार हो जाए, ऐसा शिष्य है तो हम तो तैयार नहीं होंगे भाई, हो गए चुटिया काट लो सन्यासी हो जाओ, बोले नहीं महाराज अभी तो नहीं करेंगे, तैयारी है। जैसे कि हमने इस बात को बार बार कोटेशन किया है कि शिष्य ने गुरु के सामने जाकर पूछा है अनायासेन येन अस्मान् मुच्येयम् भववन्दनात्। हे गुरुदेव, इयम् भववन्दनात्, ये संसार रूपी बंधन से मैं आसान से मुक्त हो सकूं, ऐसा कोई उपाय है तो मुझे बताइए। गुरु ने कहा कि उपाय है बेटा, तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थम यद जीव परमात्मनु हो, तत्त्वम असि आदि महावाक्य के द्वारा श्रवण मन निदिध्यासन से उत्पन्न जो अखंडाकार वृत्ति है, उस ज्ञान को जो कि तादात्म्य विषयम ज्ञानम, महावाक्य से जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वो तादात्म्य विषयक ज्ञान है। तादात्म्य का अर्थ होता है एकता, अभिन्नता, अद्वैतता। यही भववंदन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है, इसका कोई विकल्प नहीं है। शिष्य ने पुनः पूछ लिया कि महाराज को जीवा, जीव क्या है, किसको जीव कहते हैं। कह परश्च, परमात्मा किसको कहते हैं, जीवात्मा किसको कहते हैं, और ये दोनों की तादात्म्यता फिर किस तरह होगी, कैसे होगा। तो तुमने पूछ ही लिया तो हम संक्षिप्त रूप से बता देते हैं कि कह जीव, कौन्य जीव, जीव और दूसरा कौन हो सकता है, तुम्ही वही, तुम ही जीव हो। जीव नाम का तुमसे भिन्न कोई और व्यक्ति नहीं है और पदार्थ नहीं है, तुम ए वही, ये निश्चय अवधारणा, ये पक्का समझ लो कि तुम ही जीव हो। और तुम ये पूछते हो, कदाचित तुम ये प्रश्न कर लो, मैं जीव हूं तो ये बताइए कि फिर मैं कौन हूं। तब बताया ब्रह्मैवासि, तुम फिर ब्रह्म ही हो। ब्रह्म कौन है, तुम ही ब्रह्म हो। जीव कौन है, तुम ही जीव हो। जीव ब्रह्म की एकता क्या है, कैसे है एकता, तो लक्षणावृत्ति के द्वारा चैतन्य ही एक है। लक्षणावृत्ति का अर्थ क्या होता है महाराज? बोले वाक्य में जो अर्थ छुपा हुआ है, तुम, तत्, असि, ये जो पद के अर्थ हैं, यही जीवात्मा को बताने वाला पद है, परमात्मा को बताने वाला पद है और एकता को बताने वाला पद है। इसीलिए तीन पद प्रयोग किया है वाक्य में। पुनः शिष्य प्रश्न करता है कि महाराज पदार्थम एव न जानामि, एक एक पद का अर्थ ही मैं नहीं जानता हूं, तो फिर वाक्य का अर्थ मुझे कैसे बोध होगा? तो बोले ठीक है, पद का अर्थ सुन लो पहले, फिर उसके बाद वाक्य का अर्थ सुन लेना, समझ लेना। तो शिष्य के द्वारा पद के अर्थ जानने की इच्छा व्यक्त करने पर गुरु ने पहले तुम इस पद के अर्थ का प्रतिपादन करना आरंभ किया। अनेक उदाहरणों द्वारा तुम पद का शोधन किया, उसके अंतर्गत देह इंद्रियादयो भावा हानादि व्यापृति क्षमा यस्य सन्निधि मात्रेण सोहम इत्यवधारयाम इत्यादि अनेक प्रकार से निरूपण किया। उसके बाद तत्पद का शोधन आरंभ किया। निरस्ता शेष संसार दोषो स्थूलादि लक्षण अदृश्यत्वादि गुणक पराकृत तमो मलः, जिसने अपने स्वरूप से ही तम अज्ञान रूपी मल को अपाकृत किया है, पराकृत अपाकृत यानी हमेशा हटा रखा है, समस्त विशेषता का निषेध करने के बाद जो भाव और अभाव के पदार्थों को प्रकाशित करता है। तमपद के शोधन में भी वही युक्ति दिया था। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था में क्रमशः जागृत स्वप्न में भाव पदार्थों को जानने वाला और सुषुप्ति में अभाव पदार्थों को जानने वाला, वही तम पद का अर्थ है। और यहां तत्पद के शोधन में भी वही किया, समस्त विशेषणों का निषेध तद्व्यावृत्ति द्वारा निषेध करने पर जो अवशेष रहे वही तत्पद का अर्थ है। इस तरह तत्पद और तम पद का अर्थ दोनों का एक ही सिद्ध हुआ। तत्पद के दो लक्षण बताया था, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण के अंतर्गत जीवात्माना प्रवेशश्च नियंत्रित्वं च तान प्रति, उसने समस्त संकल्प मात्र से मायावृत्ति से संकल्प करके स्थूल सूक्ष्म समस्त प्रपंचों को निर्माण किया और अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच में वह स्वयं अस्ति भाति प्रिय तेन प्रवेश कर गया। और यही कारण है कि उसके द्वारा उत्पन्न किए हुए पदार्थों का व्यावहारिक सत्ता सिद्ध हुआ। यदि वह खुद मायावृत्ति से उत्पन्न किए हुए पदार्थों में खुद अस्थिभाति प्रियत्वेन प्रवेश न करता होता तो आज व्यावहारिक पदार्थ भी सिद्ध न होते, क्योंकि व्यवहार के लिए पदार्थों का अस्तित्व चाहिए, होना चाहिए, तभी व्यवहार होगा। इसीलिए दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में सुरेश्वराचार्य जी महाराज का मानस उल्लास वार्तिक है। हमने बहुत वर्ष पहले दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पर यही प्रवचन किया था और प्रेमपुरी आश्रम ने वो सारे प्रवचन की संपदा को सुरक्षित रखा है। आप सुन सकते हैं, कैसेटों में सुन सकते हैं, वेबसाइट से सुन सकते हैं, इंटरनेट से सुन सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में बैठकर उनको प्रवचन को सुन सकते हैं। सुरेश्वराचार्य जी ने पहले ही दक्षिणामूर्ति के स्तोत्र के पहले ही मंत्र की श्लोक की व्याख्या करते समय लिखा, अस्ति प्रकाशत इति व्यवहार प्रवर्तते। व्यवहार के लिए जो पदार्थ हैं, पहले तो पदार्थों में सत्ता होनी चाहिए, पदार्थ का अस्तित्व होना चाहिए, तभी वो पदार्थ के साथ हम व्यवहार कर सकते हैं। दूसरा, पदार्थ के अस्तित्व सिद्ध होने मात्र से व्यवहार नहीं हो पाएगा, तो और पदार्थ का ज्ञान भी होना पड़ेगा। पदार्थ के अस्तित्व के साथ साथ पदार्थ का ज्ञान भी होना पड़ेगा। पदार्थ तो अपने आप में अस्तित्व में है, लेकिन पदार्थ है ये ज्ञान न हो तो हम व्यवहार नहीं कर पाएंगे। कई बार घर में वस्तु रखी हुई है, लेकिन हमें वस्तु होने का भान नहीं है, तो हम उस वस्तु को उपयोग नहीं कर सकते। वस्तु का अस्तित्व तो है, घर में उपस्थिति है, लेकिन वस्तु होने का हमको ज्ञान नहीं है, तब फिर हम व्यवहार नहीं कर पाते। हम कई बार दृष्टांत देते हैं, कोई एक व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी था, व्यापार के क्रम में खूब पैसा कमाया और उसने अपनी जो कमाई पैसा है वो सबको उसने एक बड़ा बढ़िया कीमती हीरे को खरीद कर उसने रख लिया। व्यापारी ने और कुछ दिन के बाद, जैसे कि लोग कहते हैं ना, मंदी आ गई, रोना रोते हैं है? मंदी आ गई, व्यापार मंद हो गया और उसी क्रम में वह व्यापारी मर गया। उसका बेटा बेचारा, उसको कुछ पता ही नहीं, बाप ने क्या किया है, कहां रखा है, क्या किया, उसको कुछ पता नहीं है। तो घर में संपत्ति पैसे का अभाव खटक गया उस बच्चे को। कहने लगा कि महाराज, अब पैसा नहीं है, कैसे व्यवहार चलाऊं मैं, क्या करूं। अपने जान पहचान वालों के पास जाके रोने लगा। बोले, अरे तेरा बाप तो बहुत पैसा कमाया था, उसने कुछ भी नहीं रखा। बोले, कुछ भी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अरे भाई घर के जो सेफ है तिजोरी है वो सब देखा? बोले वो भी देख लिया महाराज, ना कहीं बैंक में कोई अकाउंट है, ना कहीं तिजोरी में सेफ में कोई पैसा है, कुछ है कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। हाँ एक कांच का टुकड़ा मिला था। ले जी अब ये हीरा है न जानने के कारण क्या हुआ? वस्तु अस्तित्व में है लेकिन वस्तु का बोध नहीं है उसको। हीरा अस्तित्व में है लेकिन हीरे का बोध नहीं है। तो क्या किया तूने? उस कांच के टुकड़े को बोले फेंक दिया। टुकड़ा क्या करना है? कांच। बोले गड़बड़ कर दिया तूने। अरे तेरे बाप ने जो पैसा कमाया था सब कुछ उसी में लगाया, वही वो सब कुछ है, वो कुछ नहीं नहीं सब कुछ है, कहां फेंका? तो फेंक दिया कचरे के डब्बे में। हाय राम, नगर पालिका के बीएमसी की गाड़ी ने कचरा उठा के ले गया कि नहीं? बोले अभी तो नहीं ले गया, कल रात को फेंका है। वो मित्र आया भाई उस कचरे के डब्बे में से खोजा, वो टुकड़ा निकाला। अरे मूर्ख ये टुकड़ा, तेरे बाप की सारी कमाई यही है। क्या है महाराज ये? अरे हीरा है, हीरा है। क्या होता है हीरा? कुछ नहीं पता। ले जा इसको, ले जाकर बेच। और ऐसे ही फोकड़ में नहीं देना 2400 में। तो वो गया बाजार में, करोड़ों रुपया का हीरा था वो, देखने में कांच का टुकड़ा था लेकिन करोड़ों रुपया का हीरा था, करोड़ों रुपया उसको प्राप्त हो गया। ये दृष्टांत महात्मा लोग देते हैं। इसी तरह हम भी तो हैं, वस्तु को नहीं जानते। वस्तु है, वस्तु को नहीं जानते। व्यवहार के लिए वस्तु का अस्तित्व होना चाहिए, साथ में वस्तु का ज्ञान भी होना चाहिए। अस्ति प्रकाशत इति व्यवहार प्रवर्तते। अस्तिता भी चाहिए और प्रकाशता यानी ज्ञान भी चाहिए, तभी व्यवहार की प्रवृत्ति संभव है। अब प्रश्न यह कि वो अस्तित्व वो जो अस्तित्व है वो प्रकाशता है, कस्मिन अर्थे प्रतिष्ठितम्। व्यवहार का विषयभूत जो पदार्थ में अस्तित्व और प्रकाशता, ये स्वयं वस्तुनिष्ठ है कि कई अन्यत्र निष्ठ है? वस्तु का होनापना वस्तुनिष्ठ है कि वस्तु से भिन्न कोई अन्यत्र है? वस्तु के जाननापना वस्तुनिष्ठ है कि वस्तु से कोई अन्यत्र है? वहां प्रश्न उठाया गया है शिष्य। तो सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं तत् अस्तित्वं प्रकाशत्वं कस्मिन अर्थे प्रतिष्ठितम्। बोले वस्तु में अस्तित्व, स्वयं वस्तु का अपना अस्तित्व नहीं, प्रकाशता वस्तु का अपना नहीं है, वह कहीं अन्यत्र से आया हुआ है। तो कहां से आया? तो उसी को बताया, आत्मा से। तत्पद का जो लक्ष्यार्थ है वहीं से वो अस्तित्व भी आया है, प्रकाशता भी वहीं से आई। तो इस तरह तटस्थ लक्षण के द्वारा भी तत्पद का शोधन किया गया। अभ्यास के लिए हमने तो खाली आज भूमिका में ही चले, सीधे चे अभ्यास नहीं कराया आप लोगों को। अड़तीस श्लोक तक कल व्याख्या हुई है। ప్రత్యగ్బోధోయ ఆభాతి స్వద్వయానందలక్షణ. అద్వయానందరూపశ్చ ప్రత్యగ్బోధైకలక్షణ. ఇత్తం అన్యోన్యతాదాత్మ్య ప్రతిపత్తిర్ యదా భవేత్. అబ్రహ్మత్వం తమర్థస్య వ్యావర్తేత తదైవ హి తదర్థస్య పరోక్పారోక్ష్యం యద్దేవం కిం తతః శృణు. పూర్ణానందైకరూపేణ ప్రత్యగ్బోధోవతిష్ఠతే తత్వమస్యాది వాక్యం చ తాదాత్మ్య ప్రతిపాదనే లక్ష్యౌ తత్వం పదార్థౌ తద్ లక్ష్యౌ తత్వం పదార్థౌ ద్వౌ ఉపాదాయ ప్రవర్తతే. హిత్వా ద్వౌ సవలౌ వాచ్యౌ వాక్యం వాక్యార్థబోధనే యథా ప్రవర్తతే అస్మాభిః తథా వ్యాఖ్యాతమాదరాత్. ఆలంబనతయా భాతి యోస్మత్ ప్రత్యయ శబ్దయో అంతఃకరణ సంభిన్న బోధ స త్వం పదావిదః మాయోపాధిర్ జగత్ యోని సర్వజ్ఞత్వాదిలక్షణః. పరోక్ష సవల సత్యాద్ ఆత్మకస్తత్పదావిద ప్రత్యక్ పరోక్షతైకస్య సద్వితీయత్వ పూర్ణత విరుధ్యతే యతస్తస్మాత్ లక్షణా సంప్రవర్తతే. మానాంతర విరోధేతు ముఖ్యార్థస్య పరిగ్రహే ముఖ్యార్థేనాభినాభూతే ప్రతీతిర్ లక్షణోచ్యతే. తత్వమస్యాది వాక్యేషు లక్షణ భాగలక్షణ స్వయం ఇత్యాది వాక్యస్థ పదయోరివ నాపరా. అహం బ్రహ్మేతి వాక్యార్థ బోధో యావత్ దృఢీ భవేత్. సమాధి సహితాస్తావద్ అభ్యస్యత్ శ్రవణాదికం. శ్రుత్యాచార్య ప్రసాదేన దృఢో బోధో యథా భవేత్. నిరస్తాశేషసంసార నిదాన పురుషస్తదా విశీర్ణ కార్యకరణో భూతస్వక్ష్మైరనావృత విముక్త కర్మ నిగడః సద్వయైవ విముచ్యతే సద్యయైవ విముచ్యతే ప్రారబ్ధ కర్మ వేగేన జీవన్ముక్తో యదా భవేత్ కించిత్ కాలం అనారబ్ధ కర్మ బంధస్య సంఛయే నిరస్తాతిశయానందం వైష్ణవం పరమం పదం పునరావృత్తిరాహితం పునరావృత్తిరహితం కైవల్యం ప్రతిపద్యతే. పూరా హో గయా నా? హా, తో విచార్ చల్ రహా హై. తత్వం అసి ఇస్ వాక్య కే శోధన సే జీవాత్మా పరమాత్మా కీ ఏకతా కా బోధ హోతా హై. వహ ఏకతా బోధ హీ భవబంధన్ సే నివృత్త కరానే వాలా హై. యే పహలే సే ప్రతిజ్ఞ హుయి ఔర్ ప్రతిజ్ఞ కే అనుకూల్ వాక్యార్థ శోధన్ కియా గయా. ఉస్కా ఫల్ బతా రహే హై. వస్తు మే వాక్యవృత్తి జిస్ ఉద్దేశ్య కు లేకర్ ప్రవృత్త హువా హై వో యహాం పూరా హో చుకా హై. క్యోంకి తమ్ పద కా శోధన్ హువా, తత్ పద కా శోధన్ హువా ఔర్ అసి పద సే ఏకతా బతా దియే, ఉస్కా యహాం ఫలశ్రుతి బతా రహే. ఏకత్వ బోధ కా ఫల్ క్యా హోగా? ప్రత్యక్ బోధో య ఆభాతి సో అద్వయానంద లక్షణ. ఈ వాక్య పహలే భీ ఆ చుకా హై. అద్వితీయ అద్వయానంద అద్వితీయ ఆనంద స్వరూప్ లక్షణ వాలా జో ప్రత్యక్ బోధ హై. ప్రత్యక్ మనే దేహ కే అందర్ కా బోధ. ఆభాతి వో తో అప్నే కో అపరోక్ష హై హై, ప్రత్యక్ బోధ ఆభాతి. అప్నా అపరోక్ష తో బోధ హో హీ రహా హై, జ్ఞాత హో హీ రహా హై. అద్వయానంద రూపశ్చ. अभी प्रत्येक बोध के रूप में आत्मा का भान तो हो रहा है, लेकिन अद्वय रूप में आत्मा का भान नहीं हो रहा है. सद्वय के रूप में तो हो रहा है, स्वद्वय के रूप में भी, द्वैत रूप में हो रहा है. द्वैत रूप में भी खुद प्रत्येक को अपना स्वरूप का ही बोध हो रहा है. प्रत्येक बोध हो रहा है, अपने स्वरूप का बोध हो रहा है. मैं हूं, इसलिए तो उस दिन हमने कहा था सामान्य अंश का बोध हो रहा है, विशेष अंश का बोध नहीं हो रहा है. इदम अंश का तो भ्रांति काल में भी बोध होता ही है. लेकिन भ्रांति काल में जिस समय इदम अंश का बोध हो रहा होता है, उस समय रज्जु अंश का बोध नहीं होता. इसी तरह इस समय हमको अहम अंश का तो बोध हो रहा है, ब्रह्मांश का बोध नहीं हो रहा है। तो अहम अंश तेन जो आभाति अपने को प्रतीत हो रहा है उसी को महावाक्य की विशेषता क्या है, अद्वय के रूप में बोध कराना महावाक्य का लक्ष्य है। अभी मैं हूं इतना तो है, लेकिन मैं ब्रह्म हूं ये नहीं, अहम ब्रह्मास्मि का बोध नहीं। इसलिए सद्वय ब्रह्म होगा कहीं, श्रुति कह रही है तो ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म के बारे में कुछ भी भान नहीं है। श्रुति ने तो यह भी कहा कि तुम भी हो, बोले श्रुति ने मेरे बारे में जो कहा है वो तो मेरे को भानु हो रहा है, मेरे बारे में तो श्रुति ने जो कहा तुम हो तो मैं हूं ये तो भान मुझे हो रहा है। अब ब्रह्म के बारे में श्रुति ने जो कहा है, ब्रह्म है कहां है, कैसा है, आनंद रूप है, सद रूप है, चित रूप है, आनंद रूप है, और अपना भी अपने बारे में भी केवल मैं हूं इतना ही प्रत्यक्ति न भान हो रहा है, सत रूप चिद रूप आनंद रूप से भान नहीं हो रहा है। और सद रूप चिद रूप आनंद रूप से अपने बारे में भान हो जाए तो ब्रह्म का भान हो ही जाएगा। देखो दो में से एक को यथार्थ जान लो काम बन जाए। ब्रह्म है सत चित आनंद अद्वितीय रूप में है, ये तुमको स्पष्ट भान हो जाए तो तुम्हारा काम बन गया। या मैं हूं और मैं सत चित आनंद अद्वितीय रूप में हूं ये भान हो जाए तो तुम्हारा भान, तुम्हारा कल्याण हो गया। अभी समस्या मैं हूं ये भान तो है लेकिन विशेष ज्ञान नहीं, मैं का सामान्य ज्ञान है, मैं का विशेष ज्ञान नहीं। विशेष ज्ञान क्या, सच्चिद आनंद अद्वितीयता का ज्ञान, ये विशेष ज्ञान है। इसी बात को अब आगे बता रहे हैं। इत्थम महावाक्य के शोधन द्वारा लक्ष्यार्थ में जो बोध होगा उस बोध का क्या हुआ, इत्थम शब्द से ऐक्य बोध, इत्थम अन्योन्य तादात्म्य, अन्योन्य तादात्म्य माने अपना जो लक्षण लक्ष्यार्थ में बताया था तुम पद का शोधन में वही लक्षण तत्पद के शोधन में लक्ष्यार्थ में बता दिया, और ब्रह्म का जो लक्षण तत्पद के शोधन में लक्ष्यार्थ बताया था वही लक्षण तुम पद के शोधन में मेरे बारे में बताया, तो इसका क्या अर्थ हो गया, इसका मतलब दोनों का लक्षण मिल रहा है। दोनों का लक्षण क्या हो गया, मिल गया, समझे ना। तो दोनों का लक्षण उनमें एक मिलने से क्या हो गया कि दोनों की एकता हो गई, क्योंकि लक्षण मिल गया, लक्ष्यार्थ में कोई विरोध नहीं। तो लक्षणावृत्ति में क्या होता है, जो अंश में जिस अंश को लेने पर विरोध हो रहा हो उस अंश का परित्याग कर देना चाहिए, और उस विरोध अंश का परित्याग करने पर जिस अंश में एकता होती हो वह भागत्याग लक्षणा से एकता को ग्रहण कर लेनी चाहिए। लक्षणावृत्ति का प्रयोजन इतना ही है। मैं हमेशा प्रसंग में भी कहा करता हूं, मेरा अपने ही महावाक्य है, फॉर्मूला है, मैं हमेशा कहा करता हूं, जैसे हम प्रयोग करते हैं सुख और दुख, प्राय करके सभी ये शब्द प्रयोग करते हैं सुख दुख। सामान्यतया हर सामान्य व्यक्ति को सुख दुख में बड़ा विरोधाभास लगता है, लगता है कि नहीं? शब्द सुनते ही ये विरोधाभासी शब्द है, जबकि विचार करने पर ये विरोधाभासी शब्द नहीं है। समझे कि नहीं? सुख दुख एक ही है। अब ये सामान्य व्यक्ति के दिमाग में नहीं आता, सामान्य व्यक्ति तो बिल्कुल विपरीत मानता है। जिसको सुख कहते हैं, जो सुख है वो दुख नहीं है, जिसको दुख कहते हैं वो सुख नहीं है, सुख दुख एक नहीं हो सकता है। सुखी के बेला समय में दुखी नहीं होगा, दुखी के समय में सुखी नहीं होगा, ये दोनों विरोधाभास है। तो हम प्राय करके लोगों को समझाया करते हैं, सुख लिखो तुम, तो सुख में तीन पद है, तीन अक्षर है, स प्लस उ प्लस ख इक्वल टू सुख है ना? ये तीन अक्षर मिलकर सुख बना कि नहीं? पहले स लिखो, फिर उ लिखो, फिर ख लिखो, है ना? स प्लस उ प्लस ख इक्वल टू सुख। अब दुख लिखो, द प्लस उ प्लस ख इक्वल टू दुख। सुख और दुख में कौन कौन से अक्षर का विरोध है? स और द का ही विरोध है ना? उ और ख में तो कोई विरोध है ही नहीं है। जो उ सुख बनाने के लिए सुख में प्रयोग किया गया है, जो उ सुख लिखने के लिए सुख में प्रयोग किया गया है, वही उ दुख लिखने के लिए दुख में प्रयोग कर रहे हो कि नहीं, बोलो? कोई दूसरी उ लाए हो? यदि सुख में प्रयोग किया गया उ दुख लिखते समय में उस उ को न लाया होता, कोई दूसरा उ लाया होता, तब तो विरोध है, तब तो भिन्नता है। दो प्रकार के उ है ना, है कि नहीं, बोलो? एक ह्रस्व उ, दूसरा दीर्घ उ। अब सुख लिखते समय में ह्रस्व उ लिखा, तो दुख लिखते समय दीर्घ उ लिखा होता तो हम मानते कि अलग अलग है। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन सुख लिखते समय भी स के नीचे रसो उ ही लिखोगे, दुख लिखते समय भी द के नीचे रसो उ ही लिखोगे, उ में कोई फर्क हो गया? सुख और दुख के लिखते समय में उ में कोई अंतर आ गया? नहीं आया। अब तीसरी ख, ख भी सेम है, समझे कि नहीं? दुख लिखते समय में ख जो लिखा गया, र लिखो और व लिखो तो ऊपर से जोड़ दियो लिट्टी, तो क्या हो गया? ख हो गया, है ना? सामान्यतया कुछ लोग वेद में मूर्धन्य ष को ख उच्चारण करते हैं, वेद में मूर्धन्य ष को ख उच्चारण करते, समझे कि नहीं? जैसे सहस्रसी रेखा, जबकि उसका अर्थ करते समय में स ही करना पड़ता है, लेकिन उच्चारण करते समय में ख उच्चारण करते हैं। ये वैदिक नियम है, वहां क्योंकि क स संयोग ख, मूर्धन्य षकार दो अक्षर मिलकर बना हुआ है, है ना? तो वो वेद में प्रयोग किया हुआ ख तो नहीं लिख रहे हो ना दुख लिखते समय, है?
लिखते हो, वो जो मूर्धन्य ष है जो वेद में ख उच्चारण करते हैं वो उस ख का तो प्रयोग नहीं कर रहे हो। सामान्यतया जो ख प्रयोग करते हो वही ख प्रयोग कर रहे हो। और इसी प्रकार से दुख में भी वही ख प्रयोग कर रहे हो, सुख में भी वही ख प्रयोग कर रहे हो। दूसरा ख, ख में कोई अंतर है, है? तो उ और ख में एकता है कि नहीं, सुख दुख की एकता में? उ के बिना सुख नहीं बनेगा और उसी उ के बिना दुख नहीं बनेगा। ख के बिना सुख नहीं बनेगा और उसी ख के बिना दुख नहीं बनेगा। तो सुख और दुख में उ और ख समान है कि नहीं, एक ही है कि नहीं? तो विरोध किसमें है? खाली एक अक्षर में विरोध है ना? दो अक्षर में विरोध नहीं है, एक अक्षर में विरोध है। सुख का स दुख का द नहीं हो सकता, दुख का द सुख का स नहीं हो सकता, लेकिन सुख का उ दुख का उ है और सुख का ख दुख का ख है। इसका मतलब क्या हुआ? सुख दुख एक ही तो है। अब ये कैसे महाराज बोले? विरोध तो है तो स और द में उसको निकाल दो तो दोनों जगह क्या रहा? उख 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 है, विरोध क्या रहा बोलो? इसका मतलब 75% दुख सुख है और 75% सुख दुख है कि नहीं बोलो ना? चलो चलो जो भी करो है? जो भी करो, आखिर बहुमत तो सुख दुख एक मनाने में लगे हैं कि नहीं, है ना? सुख को दुख बनाना न देने वाला, दुख को सुख बनना नहीं देने वाला कि अल्पमत है कि नहीं वहां बोलो? एक एक अक्षर ही तो सुख को दुख बनने नहीं दे रहा है, दुख को सुख बनने नहीं दे रहा है, बाकी दो अक्षर तो मिल रहे हैं। वो है? क्या फर्क पड़ गया? महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी मिलकर गवर्नमेंट बना रहे हैं तो दोनों क्या आपत्ति बोलो? दोनों मिलकर सरकार बना रहे हैं, सत्ता भोग रहे हैं, और क्या फर्क पड़ रहा है? मिलो, एकता है, विरोध को हटा दो। कांग्रेस विरोध करता है तो जा बाहर बैठ जा, है ना? मिलता है तो आ जा, तू भी सत्ता का भोग कर ले, आई जा, अपनी प्रतिशत मेंबर को लेकर आ जाओ, तुमको भी एक मिनिस्टरी दे देंगे, तुम भी सत्ता का सुख भोग लो। और तुमको विरोध ही करना है तो अपोजिशन में बैठो, विरोध करते रहो, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सुख दुख एक है। ये क्या है? इसको कहते हैं भागत त्याग लक्षणा। पहले भाग करो स उ ख, फिर विरोध अंश का त्याग करो, द और स का त्याग हो गया, दुख का द त्याग हो गया तो सुख का स भी त्याग करो तो सुख दुख एक हो गया कि नहीं? इत्थम अन्योन्य तादात्म्यम। तादात्म्य माने किसका हुआ? उ दोनों में जो प्रयोग किए गए दो उ, अब एक उ से काम चल गया कि नहीं? एक ही उसे सुख भी बन गया, उसी उ से दुख भी बन गया, तादात्म्य हो गया उ का। अब इसी तरह ख का तादात्म्य हो गया कि नहीं बोलो? जिस ख से सुख बना उसी ख से दुख बना, तो ख में तादात्म्य हो गया। एक ही ख, दो ख नहीं चाहिए, दो उ नहीं चाहिए। इसी तरह जीवात्मा और परमात्मा को एक होने नहीं, कौन नहीं दे रहा है? जीवात्मा और परमात्मा को एक होने नहीं दे रहा है तो व्यवधान क्या है वो बता रहे हैं। తమ్ అర్థస్య అబ్రహ్మత్వం బ్రహ్మస్య పారోక్షత్వం ఏ విరోధ కా కారణ హై. అబ్ వాచ్యార్థ సే ఏ కోనే నహీ దే రహా హై, తో ఈ దోనో పద కి మే ఔర్ స్పష్ట కర్కే వ్యాఖ్యా కరుంగా. ఇత్నీ సమజ్ లో కి వాచ్యార్థ సే ఏ కోనే నహీ దే రహా హై, సమజే కి నహీ? సర్వజ్ఞత్వ అల్పజ్ఞత్వ జ్ఞత్వ దోనో మే బరాబర్ హై. एक में सर्व उपाधि है, दूसरे में अल्प उपाधि है, इसलिए अल्प और सर्व की एकता नहीं हो पा रही है. तो अल्प और सर्व की जो उपाधि है, सर्व उपाधि माया को लेकर है, अल्प उपाधि अविद्या को लेकर है. भागत्याग लक्षण से ये अविद्या से अल्प उपाधि, माया से सर्व उपाधि दोनों को हटा दोगे तो ज्ञत्व ज्ञप्त्री ज्ञान में विरोध नहीं रहेगा, उसी में एकता है. तब इस एकता का फल क्या होगा? इत्तम अन्योन्यतादात्म्य प्रतिपत्ति यदा भवेत. प्रतिपत्ति माने अनुभूति. प्रतिपत्ति का अर्थ है अनुभूति. तो फल क्या हुआ? तम अर्थस्य अब्रह्मत्वम व्यावर्तेत तदेव ही. जिस समय में तादात्म्य का प्रतिपत्ति होगी, उसी समय में तम अर्थ के अब्रह्मत्व अपना हट जाएगा. अभी क्या हो रहा है? गुरु कहते हैं कि तू ब्रह्म है, है? शिष्य कहता है कि मैं ब्रह्म कैसे हूं? तो अभी त्वम पद का अब्रह्मत्व विद्यमान है कि नहीं? त्वम पद में अब्रह्मत्व विद्यमान है कि नहीं? तुम्हारे हमारे में त्वम पद का अर्थ मैं, गुरु ने मुझे तू कह रहे हैं ना, इसका अर्थ मैं क्या कहूंगा? अहम. अब अहम तो मैं निश्चय कर रहा हूं, लेकिन कैसा अहम? तो अब्रह्मत्व मुझ में अब्रह्मत्व काम कर रही है. मैं ब्रह्म नहीं हूं. और गुरु कह रहे हैं तू ब्रह्म है. मैं जब सोचता हूं तो मैं ब्रह्म कैसे हूं? इसका मतलब अपने में अब्रह्मत्व आ गया कि नहीं? जब भागत्याग लक्षण करके द्वारा तादात्म्य का अनुभूति जिस समय होगा, उसी समय में अपने अब्रह्मत्व की भ्रांति खत्म हो जाएगी, यानी ब्रह्मत्व अपरोक्ष हो जाएगा. अपने में विद्यमान अब्रह्मत्व की भ्रांति उसी समय हट जाएगी, और माने अपने ब्रह्मत्व का अपरोक्ष हो जाएगा. उसी तरह गुरु कहते हैं कि तत्त्वम असि, तत् त्वम असि, वो जो ब्रह्म है वो तू है. तदर्थस्य च पारोक्षम. अहम अर्थ प्रत्यक्ष है, अनुभव में आ रहा है ना? ब्रह्म अर्थ अपने ब्रह्म अर्थ परोक्ष है. इसी प्रकार से तत् में ब्रह्म अर्थ परोक्ष है, आम अर्थ अपरोक्ष है. तो दोनों की तादात्म्य होगा तो ब्रह्म में से तत्पद के तत्पद में से ब्रह्म की परोक्षता हट जाएगी. ध्यान देना, अभी ब्रह्म में परोक्षता का दोष है. हमारी दृष्टि से ब्रह्म परोक्ष है कि नहीं? अभी हमें ब्रह्म परोक्ष अनुभव हो रहा है कि नहीं? अपरोक्ष तो अनुभव नहीं हो रहा है ब्रह्म. तब जब ब्रह्म तत्पद के अर्थ से ब्रह्म तादात्म्य से ब्रह्म के परोक्षता हट जाते ही अहम ब्रह्मास्मि अपरोक्ष हो गया। पहले जो ब्रह्म परोक्ष था वो परोक्ष हटेगा तो अपरोक्ष हो जाएगा। अभी तुम अर्थ अब्रह्मत था, अब्रह्मत्व तो हटते ही ब्रह्म हो गया। इधर अस्मत् पद से अब्रह्मत्व तो हटा, तत्पद से परोक्षता हटी, तो क्या हुआ अपरोक्ष? ब्रह्म अपरोक्ष हो गया ना। ब्रह्म का परोक्षता हटते ही अपरोक्ष, अपना अब्रह्मत्व तो हटते ही ब्रह्मत्व तो हो गया, तो क्या हुआ अहम ब्रह्मास्मि। महावाक्य का इतनी प्रयोजन है, ये फलश्रुति है। इसके अलावा वाक्यवृत्ति का और कोई अर्थ नहीं हो सकता है। पूरे वाक्यवृत्ति का अर्थ पूरा हो गया है। तुम कहते हो कि ग्रंथ पूरा करो, ग्रंथ पूरा करो, ग्रंथ पूरा करो। अर्थ पूरा हो गया तो ग्रंथ पूरा हो चाहे न हो, अर्थ पूरा हो गया ना। उसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं। क्या चीज? देखो दो पद है ना, तत् त्वम, ये दो पद हैं। लक्षणावृत्ति के द्वारा विरोध अंश का परित्याग करो, वाच्यार्थ का परित्याग करके लक्षणार्थ में एकता है। कैसे है? तो वाक्यार्थ जब शोधन करते हैं तो त्वम पद में अब्रह्मत्व जो अभी है, त्वम पद में अब्रह्मत्व का मतलब आप यूं समझे मेरे में अब्रह्मत्व का दोष है कि नहीं, वो हटेगा। किससे हटेगा? वाक्य का जब आप शोधन करोगे, शोधन करोगे तो विरोध करने का भाग का हटा दोगे। विरोध करने का भाग क्या है? अल्पज्ञ, अविद्या उपाधि के चलते अल्पज्ञ है तो वही विरोध कर रहा है और वही अब्रह्मत्व को भाव को खड़ा कर रहा है। अब जब वाक्यार्थ शोधन करेंगे तो विरोध करने वाला अंश को हटाना पड़ेगा, तो हटते ही क्या हो गया? अब्रह्मत्व हटते ही ब्रह्मत्व का बोध होने लग जाएगा तुम पद में अपने में। अब उधर तत्पद में क्या है? ब्रह्म परोक्ष है, पता नहीं कहां है, कहां है, कैसा है, कैसा है। अभी इस समय तत्पद का अर्थ जो ब्रह्म है अनुभव में तो नहीं आ रहा है ना, परोक्ष है। परोक्ष माने प्रत्यक्ष नहीं है, अपरोक्ष नहीं है, परोक्ष है। तो वाक्यार्थ जब शोधन करोगे तो उसकी जो उपाधि है वाक्यार्थ में सर्वज्ञता, तो सर्व उपाधि माया का है। तो अल्प उपाधि का त्याग करो और सर्व उपाधि का त्याग करोगे दोनों पद में से, तो सर्व उपाधि का परित्याग करते ही ब्रह्म में तत्पद के अर्थ में परोक्षता खत्म हो जाएगी। अपने में से अब्रह्मत्व खत्म हो गया, उसमें से परोक्षता खत्म हो गया, तो क्या हुआ फिर? अहम ब्रह्मास्मि अपरोक्ष अनुभव हो जाएगा। ये समय लगेगा ग्रीस में। तत्त्वमस्यादि वाक्यं च तादात्म्य प्रतिपादने लक्ष्यौ तत्त्वं पदार्थौ द्वौ उपादाय प्रवर्तते। तादात्म प्रतिपादन करने के लिए तत्त्वमसि महावाक्य लक्ष्यौ तत्त्वं पदार्थौ द्वौ, लक्ष्यार्थ में दोनों पदार्थ पद के अर्थ है ना, इसका शोधन किया जाता है। प्रवर्तते हित्वादौ सबलौ वाच्यौ, सबलौ माने वाच्यार्थ, वाक्य में विद्यमान वाच्यार्थ है ना, पद में विद्यमान वाक्यार्थ, उसको सबल, वाक्यार्थ को सबल शब्द से यहां संबोधन किया है। हित्वा दौ सबलौ, त्वंपद का सबल अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान, तत्पद का सबल सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। वाक्यम वाक्यार्थबोधने यथा प्रवर्तते अस्माभिः तथा व्याख्यातम् आदराते। श्रुति ने जिस अभिप्राय से तत्त्वमसि महावाक्य प्रयोग किया है वही प्रयोजन पूरा करने के लिए हमने ये वाक्यवृत्ति नामक ग्रंथ की रचना की है। बड़े श्रद्धा से विद्वानों के द्वारा ये आदर करने योग्य है। अब ग्रंथ की सीधी प्रशंसा कर दी है, समाप्त नहीं हुआ अब वाक्यवृत्ति, फलश्रुति आ गया ग्रंथ का। आलंबन तया भाति यो अस्मत् प्रत्यय शब्दयो हो अंतःकरण संभिन्न बोध स तुम पदाविदा। वही फिर आवृत्ति कर दिया, अस्मत् शब्द के द्वारा, मैं शब्द के द्वारा जिसको कहा जा रहा है, भाति यो अस्मत् प्रत्यय शब्दयो हो आलंबन तया भाति अंतःकरण संभिन्न बोध। वो क्या है? अंतःकरण से युक्त हुआ हुआ ज्ञान को, चैतन्य को ही अस्मत् शब्द से कहा गया है। उसी को तुम पदाभिधा, तुम पद के वाच्यार्थ से कहा गया है। उसी तरह मायोपाधिर जगत योनि, माया उपाधि वाला संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण, सर्वज्ञत्वादि लक्षण जिसको सर्वज्ञ शब्द से कहा गया है, पारोक्ष सबला वो अभी परोक्ष है, उसके बारे में हमको कोई ज्ञान नहीं है। सत्याद्यात्मक पदाविद तत्पदाविद तत्पद से उसको कहा गया है। सबल शब्द का अर्थ वाच्यार्थ, इसी में से प्रत्यक परोक्षतैकस्य सद्वितीयत्व पूर्णता। प्रत्यक की और परोक्ष की दोनों के सबलता माने प्रत्यक्ता और परोक्तता का परित्याग करोगे और उसी के त्याग न करने से सद्वितीयता है। सद्वितीयता माने मैं अलग हूं, ईश्वर अलग है, मैं अल्पज्ञ हूं, द्वितीय सहितम सद्वितीयता विरुद्धेते। ये जो सद्वितीयता है उसका विरोधी यतः तस्माद् लक्षणा प्रतिपद्यते। इसीलिए सबल माने वाच्यार्थ से विरोध आने के कारण तत्त्वमसि महावाक्य ने वाच्यार्थ का आश्रय न लेकर लक्ष्यार्थौ प्रतिपद्यते, लक्षणावृत्ति का आश्रय लेकर महावाक्य का शोधन किया है। मानांतर विरोधे तु मुख्यार्थस्यापरिग्रहे, है ना? वाक्य का जो मुख्य अर्थ है उसके अपरिग्रह में मानार्थ विरोधत्वात् प्रमाण में विरोध आ रहा है, प्रमाण में विरोध आ रहा है। प्रत्यक्ष अनुमान आदि सारे प्रमाण का प्रयोग करते हैं तो दोनों की एकता में विरोध आता है, सिद्ध ही नहीं होता है। मुख्यार्थेना बिना भूते पद में प्रयोग किए गए वाच्य अर्थ का जो मुख्य अर्थ है उसका परित्याग करते ही उसके अविनाभूते है तब क्या प्रतीतिर लक्षणोच्यते। अविनाभूते यत प्रतीति तद लक्षणा उच्यते, तो लक्षणा के भेद बता रहे हैं यहां। तत्त्वमस्यादि वाक्येषु, ये तो कई बार आप लोगों ने सुना है, लक्षण भाग लक्षण स्वयं इत्यादि वाक्यस्थ पदयोरिव न पर। अहम् ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोधो स्याद् दृढ़ी भवेत्, बोधो यावत दृढ़ी भवेत्। अब देखो वाक्य, शंकराचार्य जी कहते हैं हमने वाक्य का शोधन कर दिया है, पदों का अर्थ भी बता दिया है, वाक्यों का अर्थ भी बता दिया है। वाच्यार्थ में तुम पद का ये अर्थ है, लक्ष्यार्थ में तुम पद का ये अर्थ है, इसी तरह वाक्यार्थ में तत्पद का ये अर्थ है, लक्ष्यार्थ में तत्पद का ये अर्थ है। वाच्यार्थ में एकता संभव नहीं, इसीलिए महावाक्य लक्षणावृत्ति से विरोध अंश का परित्याग करके तत्पद का लक्ष्यार्थ और तुम पद का लक्ष्यार्थ में एकता सिद्ध हो चुकी है, हमने स्पष्ट बता दिया है। इसमें श्रुति भी प्रमाण है, युक्ति भी प्रमाण है, सब कुछ है, हमने प्रयोग करके समझा दिया। अब तुम कहते हो महाराज आपने समझा दिया लेकिन दृढ़ नहीं हो रहा है, पक्का नहीं हो रहा है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं जब तक पक्का न हो छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, पक्का होगा, पक्का न हो तब तक नहीं छोड़ना। अहम ब्रह्मे इति वाक्यार्थ बोधो यावत दृढ़ी भवे। अभी जो बोध हुआ है श्रवण करके, लेकिन वो तो जरा सा एक मच्छर जो है वो बोध रफू चक्कर कर देगा, आगे जब मच्छर सुई लगाने लगेगा है तो वो बोध रफू चक्कर हो जाएगा, दृढ़ नहीं है, क्या करोगे। एक मच्छर तुम्हारे बोध को विचलित कर देवे, इतना कमजोर बोध है तुम्हारा, क्यों कमजोर हुआ वो, अभ्यास नहीं, ये अभ्यास नहीं इसलिए दृढ़ नहीं हो सका। अनल हक का बोध ये दृढ़ है, मंसूर का बोध दृढ़ है, तलवार से शरीर काटा जा रहा है, अच्छेद्योयम अधायोयम अक्लेद्योयम, अरे किसको काट रहे हो, मांस को काट रहे हो कि मुझे काट रहे हो, क्या हुआ। मंसूर का ये दृढ़ हुआ है ना तत्त्वमसि महावाक्य, हमको क्यों नहीं हो रहा है, एक मच्छर हमारे बोध को विचलित कर दे वे, अभ्यास की कमी। अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोधो यावत दृढ़ी भवेत्। तब तक क्या करें महाराज, जब तक दृढ़ न हो तब तक समाधि सहित सम दम उपरति तत्तिक्षा श्रद्धा समाधान, इन साधनों को कभी छोड़ना नहीं, इन साधनों के सहित तावत अभ्यसित श्रवणादिकम, श्रवणादि को भी छोड़ना नहीं, श्रवण भी नहीं छोड़ना, मनन भी नहीं छोड़ना, निधिध्यासन भी नहीं छोड़ना, और समदम आदि साधन को तो छोड़ना ही नहीं, छोड़ोगे फिसल गए। तुम अभी क्यों फिसल रहे होते, यही समदम आदि साधन को छोड़ने के कारण तुम विचलित होते हो, तुम्हारा बोध विचलित होता है, खिसक जाता है, छोड़ना नहीं। सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी, हमारी बुद्धि ये बोध तामसिक बोध है, क्यों सर्वार्थान विपरीतांश्च, महीनों लगाकर वर्षों लगाकर तत्त्वमसि सुन रहे हैं, भागवत त्याग लक्षणा कर रहे हैं, फिर भी विचलित होता है, शरीर को ही अहम कहने लग जाते हैं, इंद्रियों को ही अहम कहने लग जाते हैं, प्राण को ही अहम कहने लग जाते हैं, मन को ही, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम हो क्या है, कभी कह देते हो बातों बातों पर मैं तो मोटा हो गया, अरे वेदांत वाक्य सुनाने का क्या प्रयोजन हो गया है? वर्षों लगाकर वेदांत वाक्य तत्त्वमसी महावाक्य शोधन करके सुना रहे हैं और वाक्य बोल क्या रहे, मैं तो मोटा हो गया। तुम मोटे हो गए? इतना भी नहीं बोल सकते शरीर मोटा हो गया, सीधे मैं मोटा हो गया। इतना दिन से इतना वर्षों लगाकर वेदांत सुनाया गया, तत्त्वमसी का वाक्य सुनाया गया, कह देते हो तो मैं तो अंधा हो गया, मैं तो बहिरा हो गया, मैं तो लंगड़ा हो गया। ले जाओ इंद्रियों को मैं कहने लग गए तुम हैं? और इतना दिन से सुना रहे हैं तुम, फिर फट से कह देते हो मैं तो बहुत दुखी हूं। ले जाओ मन को मैं कहने लग गए, हम कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, बुद्धि को मैं कहने लग गए। क्या कहते हैं भाई, क्यों फिसल रहे हो, क्यों विचलित हो रहे हो, तुम्हारी निष्ठा क्यों विचलित हो रही है? इसीलिए सम आदि साधन को तुम छोड़ देते हो, इसीलिए विचलित हो जाते हो। श्रवण मनन निधिध्यासन को छोड़ देते हो, इसीलिए विचलित हो जाते हो। फुर्सत हुआ तो श्रवण कर ली, नहीं तो नहीं कर ली। फुर्सत हुआ तो थोड़ा सा बैठकर चिंतन करने लग गए, नहीं तो नहीं कर लिया। तो फुर्सत क्यों नहीं हुआ बेटा? जो जरूरी है उसके लिए समय निकालना है कि जो जरूरी नहीं है उसके लिए समय बर्बाद करना है? संसार के लिए समय बर्बाद करना है कि अपने लिए समय बर्बाद करना है? अब प्रायोरिटी हम संसार के लिए दे रहे हैं तो कहते हैं कि समय नहीं है, तब फिर विचलित हो रहे हैं। अब आप जवाब दे देते हो जब हम ये कहते हैं तो महाराज ये संसार का व्यवहार तो चलाना पड़ेगा ना, तुम्हारे चलाने से चल रहा है संसार, संसार को तुमने चलाया है, प्रारब्धाय समर्पितम कहना की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? प्रारब्धाय समर्पितम सो बपुहु, ये और क्या? अरे भाई ये शरीर तो प्रारब्ध के लिए अर्पण कर दो, उसको जरूरत है तो चलाएगा, उसको जरूरत नहीं तो खत्म करेगा। मेरा क्या बिगड़ता है आज भी प्रारब्ध इस शरीर को खत्म कर दे तू? वैराग्य तो है ही नहीं है। समाधि साधन से सहित अभ्यास करो है। इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं। श्रुत्याचार्य प्रसादेन दृढ़ो बोधो यदा भवेत् निरस्ता शेष संसार निधानः पुरुषस्तदा। तुमने प्रश्न किया था ना महाराज, भवबंधन से आसान से मैं मुक्त कैसे हो सकता हूं? तो हमने मुक्त होने का उपाय बता दिया। वाक्यार्थ की एकता ज्ञान, एकता कैसे होती है वो भी फॉर्मूले बता दिए। और अब तुम्हारा काम है कि इसका तुम अभ्यास करो, जब तक दृढ़ नहीं होगा तब तक छोड़ना नहीं। श्रुति आचार्य प्रसादेन, और तुम बार बार अभ्यास करते रहोगे तब श्रुति भी प्रसन्न होगी। शास्त्र को पढ़ते रहोगे, उपनिषदों को पढ़ते रहोगे, वेदांत ग्रंथों को पढ़ते रहोगे तो शास्त्र प्रसन्न होगा। शास्त्र जितना उसको आदर पूर्वक पढ़ोगे अध्ययन करोगे उतने ही शास्त्र अपने में छुपे हुए रहस्य को प्रकट करती है। इसलिए शास्त्र कृपा बहुत जरूरी है, और शास्त्र कृपा शास्त्र अध्ययन से ही होगा। हाँ, रखकर अक्षता चंदन और फूल से पूजा करने से शास्त्र कृपा नहीं होती है, अध्ययन ही शास्त्र कृपा का एक मुख्य माध्यम है। उसी तरह स्वयं अध्ययन करके समाधान नहीं होगा तो फिर आचार्य से अध्ययन करो, तो आचार्य की कृपा होगी। शास्त्र को आचार्य के मुख से श्रवण करो, पढ़ो, विचार करो। हाँ, तब आचार्य सामने होगा तो तुम वो शास्त्र पढ़ते समय जो विरोधाभास आ रहा है वो आचार्य समन्वय करेगा, उन विरोधों का समाधान करेगा। तो ये आचार्य कृपा और आत्मकृपा समदम आदि है ना, समदम आदि साधन रखोगे साथ में तो क्या होगा, तुम्हारी अपनी कृपा होगी, शास्त्र अध्ययन करोगे शास्त्र कृपा होगा, गुरु के मुख से पढ़ोगे गुरु कृपा होगी और ईश्वर कृपा चाहिए, और ये तीन की कृपा होगी, ईश्वर कृपा स्वतः ही होता है, समझे कि नहीं। ईश्वर कृपा के बिना वाक्य वृत्ति भी तुमको नहीं मिल सकता। ईश्वर के कृपा से प्रेमपुरी आश्रम ने सबके हाथ हाथ में कॉपी बना दी है, ये शास्त्र की बड़ी कृपा है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, प्रेमपुरी को निमित्त बनाकर ये सब प्रवचन के वातावरण निर्माण कर दिया है, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अब तुम समाधि साधन को अपनाते नहीं हो तो प्रेमपुरी का क्या दोष, शास्त्र का क्या दोष, गुरु का क्या दोष, बोलो, तुम्हारी अब तुम पर निर्भर है। हाँ, अब जो कुछ हो बंधन को जल्दी मुक्त करना है बंधन से कि कुछ दिन और रखें, जिस दिन मरना होगा उस दिन बंधन निकाला जाए तो कैसा रहेगा भगवान ने कह दिया है जीवन भर जो अभ्यास किया है अंत में वही होगा, जीवन भर बंधन चाहोगे अंत में भी बंधन रहेगा। श्रुत्याचार्य प्रसादेन दृढ़ो बोधो यदा भवेत निरस्त अशेष संसार निदान है, अशेष संसार का निरस्त करने का निदान दवाई औषधि यही है। पुरुषस्तदा विशीर्ण कार्य करणो, विशीर्ण कार्य करणो भूत सोक्ष्मेयी का नावृत विमुक्त कर्म निगढ़, कर्मजन्य जो कार्यकरण संघात है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीरों का संघात है, उस पिंजड़े के अंदर तुम फंसे हो तो क्या होगा, इस अभ्यास से विशीर्ण हो जाएगा, कार्यकरण का निगढ़न हथकड़ी बंधन, निगढ़न का अर्थ होता है बंधन हथकड़ी, वो विशीर्ण हो जाएगा। विशीर्ण विशीर्ण माने कमजोर हो जाएगा शिथिल हो जाएगा। विशीर्ण कार्य करण हो भूत सूक्ष्म में ही अनावृत विमुक्त कर्म निगढ़ सद्य एव विमुच्यते, तुरंत मुक्ति। हा बंधन क्या सुंदर है, टीकाकार ने बड़ा सुंदर अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशत, ऐसा व्यक्ति का शरीर बंधन रहेगा नहीं, शरीर भले ही रह जाए कैसे होगा, अशरीर हो जाएगा कैसे महाराज। यद्यथा अहिर निर्लोयनी वाल्मीकि मृता प्रत्यस्तः सहितेवम एवं इदम शरीरम सेते अथा अयम अशरीरो अमृतो प्राणो ब्रह्मैव तेजैव। विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य जी ने कहा जैसे उस ज्ञानी को ये शरीर कैसा प्रतीत होने लगेगा, जैसे सर्प अपने कैंचुली को छोड़ने के बाद अपने छोड़े हुए कैंचुली को वो देखता है, और हवा से हिले अग्नि से जले पानी से गले कुछ भी हो जाए उस सर्प को कुछ लेना देना नहीं। तो इसी प्रकार के तुम्हारा शरीर, शंकराचार्य जी कहते हैं विवेक चूड़ामणि में जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण में, वृक्षास पर्ण पतति यत्र कुत्र चत्वारे शिवक्षेत्रे च, चाहे सड़क में गिर जाए वो पात, पेड़ से पीला होकर अलग हुआ हुआ पत्ता, वो हवा के वेग से सड़क में गिर जाए, उस पेड़ को क्या लेना देना है? बोलो। और सड़क से उड़ते उड़ते गंदे नाली में जाके सड़ने लग गया तो उस पेड़ को क्या लेना देना है? और सड़क ब्लॉक माने नाली ब्लॉक हो गया करके सफाई करने वाले ने नाली से बाहर निकाल दिया, सूखने के बाद वो पत्ता उड़ते उड़ते गया शिव मंदिर के अंदर, तो पेड़ को क्या लेना देना है? और पुजारी ने साफ करके आग लगा के डरा दी जला दी तो पेड़ को क्या लेना देना है? तो ये शरीर कैसा बोध कैसा निश्चय करना है? जैसे पत्ती पेड़ से अलग हुआ हुआ पत्ता को कहीं भी गिरे कोई लेना देना नहीं, कहीं भी जाए चाहे सड़े चाहे जले चाहे रहे चाहे शिव मंदिर में रहे चाहे जूते के नीचे आए, पेड़ को क्या मतलब? बोलो। इसी तरह तुम ये निश्चय कर लो कि ये शरीर मंदिर में मरे, हरिद्वार में मरे, बंबई में मरे, ब्रिज कैंडी में मरे, ये मरे तुमने छोड़ दिया, ये शरीर छोड़ा हुआ शरीर नाहम देह अहम साक्षी, नाहम देह अहम देवो देह साक्षी इति निश्चयात् इति वेदांत डिंडी में तभी यत्र कुत्र परणम पतति ज्ञाने रोके विमुक्त कर्म निगड़ा सदैव विमुच्यते, तुम्हारे सारे कर्म का तुमसे अलग हो जाएगा, प्रारब्ध रहेगा। प्रारब्ध कर्म वेगेण जीवन मुक्तो यदा भवेत कंचित कालम अनारब्ध कर्म बंधस्य संचये। प्रारब्ध कर्म वेगेण प्रारब्ध कर्मों के चलते ये शरीर कुछ दिन रहता है तो वो जीवन मुक्ति के आनंद लेने के लिए रहता है। कंचित कालम अनारब्धम कर्म बंधस्य संचय, वो प्रारब्ध कर्म के बंधन से कुछ दिन ये टिका रहे तब तक जीवन मुक्ति का आनंद लो, और प्रारब्ध समाप्त होने पर ये शरीर खत्म हो जाए तो विदेह मुक्ति तो तुम्हारे हाथ में है ही है। निरस्तातिशयानंदम, तब क्या होगा? तब तो फिर जीवन मुक्त के बाद विदेह मुक्त निरत निरस्तातिशयानंदम, अतिशय आनंद का निस्तार होगा, फिर वो आनंद किसी की अपेक्षा से ज्यादा ये नहीं कहा जाएगा। निरस्त अतिशय जो तैतरीय उपनिषद में प्रश्न उपनिषद में बताया गया है, वैष्णवम परमम पदम कैसा है वो? पुनरावृत्ति रहितम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, पुनरावृत्ति रहितम वैष्णवम परमम पदम। पुनरावृत्ति रहितम रहितम कैवल्यम प्रतिपद्य, तो बीच में ज्यादा है, कैवल्यम प्रतिपद्यते ये विदेह मुक्त कैवल्य मोक्ष, फिर वो आगमन गमन आगमन से वो मुक्त हो जाएगा। यही संसार बंधन की निवृत्ति है बेटा, अभ्यास करो, अब तुम्हारे पर निर्भर है, वाक्य वृत्ति पूरा हो गया है। तो प्रेमपुरी आश्रम को धन्यवाद, और ये दैया परिवार को भी धन्यवाद जो ऐसा वेदांत का गूढ़ विचार करने का प्रोग्राम आयोजन करते हैं। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित मातुश्री बेलाबेन, पिता श्री मूलजी भाई एवं भाई श्री हरिराम दैया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत ये कार्यक्रम एकादश दिवसीय प्रवचन माला का वाक्य वृत्ति के आधार पर हमने जो विचार किया है, अब तुम्हारे पर निर्भर करता है कि तुम अपने बंधन को कब तक रखते हो, किस तरह रखते हो और कितनी जल्दी हटाते हो, ये हमारा काम पूरा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.
హరి ఓం. పూజ్య మహారాజ్ కి పునీత్ శ్రీ చరణం మే వందన్. దేఖియే జీవన్ మే జో మహారాజ్ జీ నే అభీ వాక్యవృత్తి కి బాత్ కి, వృత్తి నివృత్తి ఔర్ జాగృతి, ये हमारे तीनों में वृत्ति आती है. जैसे सुख दुख की महाराज जी ने बात की, तो हमें जीवन में यह सीखना है कि कौन सी वृत्ति हम रखें. एक तो निवृत्ति वृत्ति रहती है कि चलो जाने तो क्या करना है, निवृत्ति हो गए, अभी तो 60 के ऊपर पहुंच गए, 70 के ऊपर, 80 के ऊपर, ये एक वृत्ति हो गई. और एक जागृति, जो पूज्य महाराज जी की प्रवचन सुनते हैं तो एक करंट आता है हमारे में, तो यह जबरदस्त. और ऐसा तीसरे तीन और शब्द है, सत, संत और सत्संगी. तो तीन में भी सत है. जब इस सुख दुख को मैं सुन रहा था तो मैंने बोला ऐसे कितने शब्द हमको ढूंढ ढूंढ के मिलेंगे कि जिससे हम ये प्रमाणित कर सकते हैं हम सत्संगी होने का भी एक आदर्श है हमारे में, एक जबरदस्त ज्ञान का एक धोध हमारे में बह रहा है. उनका कारण ये सत और संत है. तो ऐसे पुनीत वाणी को वंदन करते हुए, बारिश बहुत है, जल्दी घर पे पहुंचने की भी तड़प होगी सबको, तो ज्यादा न बोलते हुए विशेष कल के सायं के प्रवचन के बारे में बता दूं. 5:30 से 6:30 आध्यात्म सत्य, बहुत ही सुंदर यह सीढ़ी पर यह दर्शाया जाएगा, जिसमें जो भी दर्शन हम मैं की जो बातें हो रही है तो वह पूरे दर्शन हम स्क्रीन के माध्यम से कर सकेंगे. कल का दिन हम चुके नहीं, 5:30 से 6:30 यह हम यहां यही हॉल में शायद होगा, तो जैसे भी होगा वो नीचे लिखा होगा कौन से हॉल में, तो वहां से आके उसके दर्शन करें. पूज्य महाराज जी हमारे साथ ऐसे तो सायं नहीं है, मगर दिन में प्रातः प्रवचन के माध्यम से एवं पंचदशी स्वाध्याय माध्यम से 9:30 से 9:30 भी रहेंगे, तो 7:30 से 8:30 30 तारीख तक पूज्य महाराज जी के दर्शन एवं आशीर्वचन का हम लाभ ले सकते हैं. ईश्वर की बड़ी कृपा है कि 1 तारीख से गुरु शरणानंद जी महाराज यहां पधारेंगे और पिताजी हरिभाई ड्रेसवाला के शताब्दी महोत्सव पर पूज्य महाराज जी भी प्रातः रहेंगे और भी कई संत रहेंगे. सायं प्रवचन में पूज्य महाराज जी द्वारा महाभारत ज्ञानामृत जो गुरु शरणानंद जी महाराज द्वारा, उसका हमें ज्ञान आशीर्वचन मिलेगा और कई संत उसमें उपस्थित रहेंगे. 1, 2, 3 तारीख तक यह प्रवचन रहेगा. पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा भी पधारेंगे, तो यह सब आनंद का अवसर है. पूज्य महाराज जी यहां है. एक बात कह दूं कि महाराज जी ने एक बात कही थी बीच में, तो उसको हम बहुत ही अच्छी तरह से लेते हैं. अगर हमें आत्मा की बात सुननी है तो गुरु शरण में जाना पड़ता है, और गुरु शरण जी महाराज, गुरु शरणानंद जी महाराज सोमवार को पधार रहे हैं, 1 तारीख को पधार रहे हैं, माफ कीजिए, 1 तारीख को पधार रहे हैं, और पूज्य महाराज जी की जो पूर्णाहुति होगी प्रवचन की प्रातः वो 30 तारीख को होगी, और वो आत्मा का ज्ञान पूरा महाराज जी दे के जाएंगे. तो यह योगानुयायी एक बहुत ही सुंदर बात है कि हम आत्मा की बात करते हुए सुनते सुनते गुरु शरण में जाएंगे. ऐसे गुरु रूप पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए आप सब की तरफ से हम कल प्रातः पूज्य महाराज जी के साथ प्रातः प्रवचन एवं स्वाध्याय में आएंगे. हरिओम हरिओम.